प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 16 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं फिर से आपसे एक घटना के माध्यम से जिंदगी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर बात करने जा रहा हूं और ये पहलू कौन सा होगा मुझे लगता है कि घटना को सुन लेने के बाद शायद अपने आप अगर आप निष्कर्ष निकालेंगे तो वह ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए ज्यादा व्यावहारिक होगा और वह अधिक अमूल्य भी होगा। आपको ध्यान होगा कि पिछले सप्ताह मैंने आपसे एक घटना की चर्चा की थी कि हमारे बिल्कुल पड़ोस में एक आई रहती थी जो नहीं रही, उनका निधन हो गया और उनके निधन के बाद जो एक घटना घटित हुई थी, खासकर उनके बड़े बेटे ने जिस बात के लिए कहा था कि वो अस्पताल में अकेली कैसी रहेंगी जबकि उनकी आई का निधन हो गया था, इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं हम रात में उन्हें घर लेकर आएंगे, वो वहां अकेली कैसी रहेंगी। मैंने इस घटना की चर्चा की थी और इसे मैंने शायद शीर्षक दिया था लगाओ और इस पर आप सबकी बड़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली, बहुत खूबसूरत प्रतिक्रियाएं मिली और मुझे बहुत सुकून मिला आप सबकी प्रतिक्रियाओं को पढ़कर कि आप भी कहीं न कहीं उसी तरह का भाव महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम सबके अंदर अभी भी इंसान जिंदा है, ईसा का तत्व मौजूद है, हम अभी पूरी तरह से आदमी नहीं बने हैं, यानी कि आदम नहीं बने हैं, है ना। हम में चेतना है, विवेक है, हम महसूस करते हैं और संबंधों को हम तरजीह देते हैं। उसी कंटिन्यूएशन में मैं अब यहां दूसरी घटना का जिक्र करने जा रहा हूं। हुआ ये मतलब दोस्तों कि रविवार की सुबह उनकी शव यात्रा 11 बजे के आसपास होनी थी। सुबह सुबह मेरी अपने बेटे से बात हुई तो बेटे ने कहा कि पापा मैं भी शव यात्रा में अंतिम संस्कार में शामिल होऊंगा। मैं कहा कि ठीक है चलो, अगर तुम चाहते हो तो तुम भी चलो, अदरवाइज तो मैं जा ही रहा हूं, तुम जैसा ठीक समझो। तो उसने कहा कि नहीं मैं भी चलूंगा। राइट, ये बात उसने कह दी और इसके बाद शव यात्रा प्रारंभ हुई। तो उसने फिर मुझसे कहा था कि आप जब वहां पहुंच जाएंगे तब फिर आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि काफी कुछ दाह संस्कार के लिए पूजा जो एक विधान होता है वो विधान करना होता है, तो उसकी चूंकि दूसरी तरह की व्यस्तताएं थी तो उसने कहा था कि मुझे फोन कर दीजिएगा तो मैं उसी समय पहुंच जाऊंगा। मैं कहा कि ठीक है तुम ऐसा कर लो, वो ज्यादा व्यावहारिक होगा, मैं तो जा ही रहा हूं, मैं तो प्रतिनिधित्व कर ही रहा हूं। मित्रों जब यात्रा प्रारंभ होने हो गई और हम लोग वहां पहुंच गए तो फिर मैंने बेटे को फोन किया कि अब तुम चाहो तो वहां से चल सकते हो और तुम जब तक पहुंचोगे तब तक यहां जो विधि विधान अभी चल रहे हैं वो पूरे हो जाएंगे और दाह संस्कार का समय आ जाएगा। दोस्तों फिर उसने एक प्रश्न किया कि पापा क्या मेरा आना जरूरी है, ये प्रश्न उसने किया। देखिए सामान्यतया यही होता है कि शुरू में जब हम भावावेश में होते हैं तो हम अपनी स्वीकृति दे देते हैं, है ना, बाद में वो भावावेश धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगता है, इमोशनल जकड़न से हम उबरने लगते हैं, फिर दिमाग हावी होने लगता है, बुद्धि काम करने लगती है। तो डेफिनेटली चूंकि इस बीच में कुछ घंटे बीत चुके थे तो बेटे के दिमाग में ये बात आई होगी कि अब पापा तो गए ही हैं, मुझे जाने की क्या जरूरत है, नहीं भी जाऊंगा तो चलूंगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। इस तरह की बातें आने लगती हैं जब आदमी के ऊपर कुछ दूसरे दबाव होते हैं, दूसरी प्राथमिकताएं होती हैं, काम दिखाई देता है, तो स्वाभाविक है कि उसमें इसी तरह के निर्णय व्यक्ति लेता है, हर कोई इसी तरह के निर्णय लेता है। उसने जब ये प्रश्न पूछा तो फिर मैं समझ गया और फिर मैंने जवाब दिया कि देखो तुमको आने में जाने में यहां अटेंड करने में मुश्किल से एक घंटे का वक्त लगेगा, केवल एक घंटे का वक्त, और ये एक घंटे का वक्त तुमको पूरी जिंदगी भर की एक सौगात देगा। और सौगात इस मायने में देगा कि हमारे पड़ोसी हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि बेटा भी शामिल हुआ था अंतिम संस्कार में, बेटा भी शामिल हुआ था, यानी कि पिता और पुत्र दोनों ही शामिल हुए, उसका वजन कितना अधिक बढ़ जाएगा। उसको बात तुरंत समझ में आ गई, बोली बोली ठीक है ठीक है ठीक है पापा मैं अभी बस तुरंत आता हूं, और वो पहुंच गया। बस मित्रों ये छोटी सी घटना है, आप सब अपने अपने ढंग से अब इस घटना में जीवन का कौन सा पहलू रिफ्लेक्ट होता हो रहा है, दिखाई दे रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद कोई वाद विवाद नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, उसने सुना और इमीडिएट कहा कि मैं आ रहा हूं और वो आया, राइट। अब आप देखिए कि इसमें संदेश क्या है, हम उन संदेशों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जो सबसे बड़ा संदेश है दोस्तों वो ये होता है कि जब किसी के यहां भी इस तरीके के मुसीबत के क्षण हो या दुख के क्षण हो, ये मुसीबत का क्षण तो नहीं था, दुख का क्षण था। मुसीबत का क्षण का मतलब है कि किसी के यहां कोई संकट आ गया है और हम उस संकट में कुछ मदद करने की स्थिति में होते हैं, हम सबसे पहले खड़े होते हैं। तो हमारा कितना लगता है, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, चलिए आधा दिन ही सही, लेकिन हम उस एक घंटे को देने के बाद उनकी जिंदगी के पता नहीं कितने घंटों को हासिल करने के अधिकारी हो जाते हैं। और यहां मैं जो अधिकारी कह रहा हूं वो कोई आदेश नुमा अधिकार नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ये इमोशनल राइट है। और ये अधिकार आपको मांगने नहीं पड़ते, बिल्कुल नहीं। ये नहीं कि साहब मेरा तो अधिकार था, मैंने आपको देखिए एक घंटा वहां दिया था तो ब्याज सहित आप दो घंटे तो मुझे देंगे ही देंगे, नॉट एट ऑल। वो एक घंटे की जो भरपाई है वो पता नहीं कितने घंटों के जरिए करने की कोशिश करता रहेगा और अंत तक वो उसकी कोशिश पूरी नहीं होगी। वो एक घटना याद आएगी उसको, अरे यार देखो वो आया था, उसने किया था, इसके बावजूद वो आया, कोई नहीं आया लेकिन वह आया, वह था, भले ही उसने कुछ नहीं किया लेकिन वो वहां मौजूद तो था। इसका मतलब यह है, सिंपल सी बात मित्रों, भले ही आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन बिना किए ही आप बहुत कुछ कर रहे हैं। और ये बहुत मजेदार बात होती है और बहुत ही रहस्यपूर्ण होती है। रहस्यपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता नहीं लगता कि उसकी कीमत कितनी है, इसीलिए तो वो रहस्य है। उसका कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, उसे छोड़ दीजिए, प्रकृति पर छोड़ दीजिए, ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए। रहस्यपूर्ण इस मायने में भी है कि आपको नहीं मालूम कि इसके अंदर कितनी शक्ति विद्यमान है और आप तो बस चुपचाप ही खड़े, आपको लग रहा है कि ये छोटी सी ही तो बात है, लेकिन सामने वाले पर जो उसका असर हो रहा है आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि वो कितना है। आप थोड़ा सा देते हैं और कितना सारा आप पा जाते हैं। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि जब हम अपने समय का कैलकुलेशन करते हैं तो समय के कैलकुलेशन के मामले में हमेशा इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी वैल्यू किस समय कितनी ज्यादा होगी। समय 24 घंटे का होता है एक दिन में, तो यह मतलब नहीं है इसका कि हर घंटे का मूल्य समान है। आप 24 घंटे में बांट दीजिए और कहिए कि एक घंटे का मूल्य इसका इतना है, नॉट एट ऑल। सुबह का वक्त सबसे मूल्यवान होता है, इसकी आप बराबरी ही नहीं कर सकते। आप सुबह जो भी काम करेंगे वो काम उसका जो आउटपुट होगा, अगर आप दोपहर में करेंगे उसी काम को या शाम को करेंगे तो उसकी तुलना में 3 गुना 4 गुना होगा। सुबह ही पूजा पाठ क्यों किए जाते हैं, सुबह ही मंदिर क्यों खुलते हैं, सुबह ही सबसे ज्यादा मंदिरों के आसपास आपको भिखारी क्यों दिखाई देते हैं, इसलिए क्योंकि सुबह सुबह जब हम सोकर उठते हैं दिमाग को आराम मिला हुआ है, शरीर को भी आराम मिला हुआ है, नहा धो करके हम बिल्कुल फ्रेश हैं, तो हमारे अंदर जो सात्विक भाव हैं वो ज्यादा प्रबल हैं। तो बट नेचुरल है कि जब सात्विक भाव प्रबल हैं तो भिखारी की संभावना इस बारे में बढ़ जाती है कि उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, टोटल में तो ज्यादा मिलेगा ही, भले आप रोज 54 दे रहे, रोज 1 रुपया दे रहे तो आप 1 ही रुपया दें, लेकिन 1-1 रुपया देने वालों की संख्या दोपहर की तुलना में ज्यादा होगी क्योंकि सात्विक भाव प्रबल है। तो दोस्तों खासकर जहां किसी की मदद करने की बात हो, जहां किसी के सुख दुख में शामिल करने की बात हो, आप कभी अपने दिमाग में ये बात मत लाइए कि यार कौन देखता है, कौन पूछता है, कौन जानता है, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, एक ही चीज दिमाग में होनी चाहिए, मैं स्वार्थवश नहीं कह रहा हूं कि मुझे इसके बदले में कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, उसे रहस्य में छोड़ दीजिए। नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, आप इसी खुश फहमी में जीते रहेंगे कि यार जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरे आसपास के लोग मेरी मदद करने को हैं। और ये मजबूती आपको कब मिलेगी, ये विश्वास आपको कब होगा, ये तब होगा जब आपने इसे अर्जित किया होगा, आपने खुद भी ऐसा किया होगा। हो सकता है कि ऐसा न हो भविष्य में, न हो, और जब जरूरत हो उस समय आप अकेले ही हो, लेकिन जो आपने अनुभव को जिया है कि नहीं मैं मजबूत हूं, नहीं मुझे मदद मिल सकती है, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं? उसकी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वैल्यू है कि आप कितने आत्मविश्वास के साथ जी रहे हैं। आपने उन क्षणों को जो अब आपका अतीत बन चुका है कितनी आस्था के साथ जिया है, कितने खुशनुमा लहमे लम्हे थे वो जो आपने जिए हैं। और मुझे लगता है कि जीवन इससे बड़ा और आपको क्या दे सकता है कि वो आपके बीते हुए क्षणों को लगातार खुशनुमा बनाता चला जा रहा है। और मित्रों, मुझे लगता है कि हमें अपने समय का जो मूल्यांकन है वो इस आधार पर भी करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, फिर बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।